भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा जी श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्विषे नमः। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 28। अथ आगत स्मृति अभय रिपुं बल विहाय सार्थम इव हरन्तम आत्मनः रुषा अहन शिरसि दृढ़ेन मुष्टिना सुरा अधिप गिरिम इव वज्र रंहसा। अथागत स्मृतिरभयो रिपुंबलो आगत स्मृतिरभयोरिपुंबलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मना। ऋषाहनत्शिरसि दृढ़ेन मृष्टिना ऋषाहनत्शिरसि दृढ़ेन मृष्टिना सुरादिपो गिरिमिव वज्ररंहसा। सुरादिपो असुराधिपो गिरिमिव वज्ररंहसा स्मृति अपना स्मरण करते हुए अभय निर्भय रिपुम शत्रु को बल बलराम ने विहाय छोड़कर सार्थम साथ इव निसंदेह हरंतम हरण करते हुए आत्मनः अपने आप रुषा क्रोध के साथ अहनत प्रहार किया सिरसी सिर के ऊपर दृढ़ेन कठोर मुष्टिना अपनी मुट्ठी से सूर अधिप देवताओं के राजा इंद्र गिरिम पर्वत पर इव सदृश वज्र वज्र का रंहसा स्फूर्ति से। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। वास्तविक स्थिति का स्मरण करते हुए निर्भीक बलराम की समझ में आ गया कि यह असुर मेरा हरण करके मुझे मेरे साथियों से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। तब वे क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने असुर के सिर पर अपनी कठोर मुट्ठी से उसी तरह प्रहार किया जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र अपने वज्र से पर्वत पर प्रहार करते हैं। तात्पर्य, भगवान बलराम की बलिष्ठ मुट्ठी असुर के सिर के टुकड़े करती हुई उसी तरह पड़ी जिस तरह विशाल वज्रपात से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं। विहाय सार्थम इव पद का संधि विच्छेद विहायसा अर्थम इव के रूप में भी किया जा सकता है, जिसका अर्थ होगा कि वह असुर विहायस अर्थात आकाश के विराट पथ पर बलराम को ले जाने के उद्देश्य से उड़ रहा था, क्योंकि वे ही उसके अर्थम अर्थात खोजने की वस्तु थे। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गीतारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय की। यहाँ पर प्रसंग में सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ग्रीष्मकालीन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु के बारे में कहते ग्रीष्मो नाम ऋतुर्भवन नाति प्रियां शरीरिण। ग्रीष्म ऋतु कैसी है? शरीरधारियों को प्रिय नहीं है, मनुष्य को नहीं, जितने भी शरीरधारी है किसी को ग्रीष्म ऋतु पसंद नहीं है। मनुष्य तो फिर भी कुछ पंखा ऐसी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन पशु पक्षियों के लिए तो अत्यंत कष्टदायक है। लेकिन ऐसी ग्रीष्म ऋतु भी सच वृंदावन गुणे वसंत इव लक्षिता। वृंदावन में यह ग्रीष्म ऋतु भी वसंत के समान वातावरण बना हुआ है, क्योंकि अनेक प्रकार के झरने गिर रहे हैं, अनेक छोटे 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 बड़े कुंड तालाब सब पानियों से पूर्ण भरे हुए हैं, नदियां बह रही है मानसी गंगा यमुना जी इत्यादि, और साथ में सघन वृक्षावली बड़े बड़े वृक्ष लताएं और सर्वत्र हरा हरा घास। तो इन सभी के कारण जो सूर्य का ग्रीष्म के सूर्य का जो प्रचंड ताप है उसका अनुभव भी वृंदावन में नहीं हो रहा है। सूर्य की प्रचंड किरणों की भी असर उसकी गर्मी वृंदावन में नहीं है, बिल्कुल वसंत जैसा वातावरण बना हुआ है। और ऐसे में कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ वृंदावन में गोचारण के लिए गए हैं और वहाँ पर अपने सखाओं के साथ अलग अलग प्रकार से खेल कर रहे हैं। कैसे खेल खेल रहे हैं? तो कहते कि लोक सिद्धा, लोक में जो प्रचलित है, जो सामान्य बालक खेलते हैं, ऐसे ही सब खेल कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। लेकिन कहते कि भले ही लोक सिद्धा, लोक में जो बालक खेलते वैसा खेल है, लेकिन सामान्य बालक जैसा वो दिखने पर भी भगवान की लीला लौकिक नहीं है, अलौकिक है। और तभी तो जन्म से ही लौकिक वस्तुओं से परम विरक्त ऐसे परम हंस श्री सुखदेव जी इस लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और वह भी परीक्षित महाराज जिसके पास अभी जीवन में 2 दिन बचे हैं, जिसकी मृत्यु 2 दिन में आने वाली है, वह व्यक्ति कभी लौकिक बात सुनेगा नहीं। तो भगवान की यह लीला भले ही सामान्य मनुष्य इसको लौकिक समझे उसको इसमें आनंद नहीं आएगा, लेकिन जो भक्त है उसको इसी में सुख मिलेगा। भक्तों के लिए यही प्राण है, यही सब कुछ है, और इन्हीं भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए, इन्हीं लीलाओं को सुनने के लिए भक्त मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये सब लीला नहीं मिलेगी। इसलिए पृथु महाराज जिसके सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और भगवान से क्या मांगते हैं, तो पहले कहते तदप्य नाथ न कामये हम क्वचित, न कामये नाथ तदप्य हम क्वचित, कहते कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि संसार में जीवों को संसार के बंधन से मुक्त कराने वाले, मोक्ष देने वाले एकमात्र आप ही है। आपको छोड़कर किसी देवताओं में या किसी अन्य में इतनी शक्ति नहीं है जो जीवों को मोक्ष दे सके। और इस बात को श्रीमद् भागवत में देवताओं ने भी प्रमाणित किया है। मुचुकंद महाराज वाले प्रसंग में देवता कहते मुचुकंद जी से, वरम वृणिश्व भद्रम ते, हे राजन, आपके सहाय से ही हम लोग असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए हैं, तो इसलिए आपको जो अभिष्ट हो हमारे पास से वरदान मांग लीजिए, पर रुत्ते केवल्यम अज्ञन, एकमात्र केवल्य मोक्ष को छोड़कर आपके मन में जो भी इच्छा है मांग लीजिए। क्यों? क्योंकि एक एवेश्वर तस्य भगवान विष्णु अव्यय, क्योंकि मुक्ति के एकमात्र ईश्वर है भगवान अविनाशी विष्णु, उसको छोड़कर संसार में कोई भी जीव को मोक्ष नहीं दे सकता है। इसलिए राजन, आप मुक्ति को छोड़कर जो चाहिए मांग लीजिए। तो वह भगवान जो जीवों को मोक्ष देने में समर्थ है, उसके सामने खड़े है पृथु महाराज और कहते कि ननाथ तदपि अहम क्वचित, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मुक्ति देने वाले हैं, तदपि फिर भी हमें आपके पास से क्वचित थोड़ी सी भी मुक्ति की कामना नहीं है। क्यों? नयत्र युष्मचरणाम्बुजासव, नयत्र, क्योंकि उस मोक्ष में युष्मचरणाम्बुज आसव न, आपके चरण कमलों के मकरंद स्वरूप आपकी मधुर कथाएं नहीं है उस मोक्ष में, इसलिए हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। और ब्रज लीला में भी हमने सुना है कि वृंदावन में आकाश में ट्रैफिक जाम रहता था, जैसे हमारे यहाँ पर बम्बई में ट्रैफिक जाम रोड पर रहता है, ऐसे वृंदावन के आकाश में देवताओं के विमान से ट्रैफिक जाम रहता था, क्योंकि देवता सब कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए प्रायः आकाश में ही लगे रहते थे। तो एक बार यशोदा मैया ने कृष्ण से कहा, छोटे से थे, कि लाला अपने बाबा के पादुका लेकर आ। तो कृष्ण दौड़ते हुए गए और नंद बाबा के पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर आ रहे थे और जो दरवाजे की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो गिर गए और गिरते ही रोने लगे। और इस लीला को आकाश से नारद जी और लोमिस ऋषि देख रहे थे, तो देखकर दोनों हंसने लगे। बहुत हंसी आई कि देखो, जिसको आनंद स्वरूप कह रहे वह ब्रह्म तो यहाँ पर रो रहा है, सचिदानंद जिसका स्वरूप है वह ब्रह्म यहाँ पर रो रहा है, ऐसा कहते हुए दोनों हंस रहे थे। और हंसते हंसते अचानक नारद जी रोने लगे। लोमेश जी कहते, अरे नारद बाबा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? क्या कृष्ण रो रहे हैं इसलिए आप रो रहे हैं, या तो कृष्ण को चोट लगी हुई इस बात के लिए आप रो रहे हैं? तब नारद जी कहते कि नहीं ऋषिवर, न तो मुझे कृष्ण की चोट के कारण रोना आ रहा है और न तो कृष्ण रो रहे इसलिए मैं रो रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है उस अभागों के लिए कि जो मुक्त हो गए हैं। अगर वह मुक्त नहीं हुए होते तो जीवन में किसी ना किसी जन्म में कभी ना कभी तो उसको कृष्ण की यह मधुर लीला देखने या सुनने का अवसर तो मिल जाता, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में तो कृष्ण की लीला उसके कानों में आती, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि वो मुक्त हो गए और ऐसे मुक्त लोगों के ऊपर मुझे रोना आ रहा है। तो यही बात यहाँ पर पृथु महाराज कह रहे हैं कि नयत्र युष्म चरणाम्बुजास, जहाँ पर आपकी लीला कथा नहीं है उस मोक्ष को हम क्या करें, तब आपको क्या चाहिए। महत्तमांतर हदयान मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुत मेष मेवर, कहते कि हे प्रभु, महत्तमान अंतर हदयान मुखच्युतो, आपके भक्तों के अंतःकरण में प्रकट होकर उसके मुख से च्युत होने वाली, उसके मुख से निकलने वाली लीला कथा सुनते हुए हमको दो कानों से तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए विदत्स्व कर्णायुत, हमको आपकी कथा सुनने के लिए 10,000 कान दे दीजिए। पृथ्वी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे कि 10,000 कानों से हम आपकी कथा सुनेंगे तब भी हमको तृप्ति नहीं होगी। और फिर आगे कहते क्यों क्यों कथा में इतनी रुचि है, तो कहते कि हे प्रभु, आपने अपने चरण कमलों को अपने भक्तों के हृदय में स्थापित कर रखा है और भक्तों के मुख से जो वाणी निकलती है वह उसके अंतःकरण में प्रकट होकर निकलती है, तो उसी अंतःकरण में आपके चरण कमल भी है और उसी अंतःकरण में से आपकी कथा भी निकलती है, तो भक्त के मुख से जो शब्द निकलते हैं वह आपके चरण कमलों की पराग रज से युक्त होकर निकलते हैं। भवत पदाम्बोज सुधा कणा नील महन मुख च्युत, आपके भक्तों के मुख से निकली हुई वाणी आपके चरणों के पराग रज से युक्त होती है और इसीलिए हम जैसे कुयोगी योग भ्रष्ट आपसे विमुख जीवों के कान के रास्ते से अगर यह वाणी उसके अंतःकरण में प्रविष्ट होगी तो उस अंतःकरण में आपके स्वरूप को प्रकट कर देंगी। भक्तों की वाणी में इतना सामर्थ्य है, पृथ्वी महाराज कहते हैं कि संसार में आपके स्वरूप को भूले हुए जीवों के अंतःकरण में वह शब्द जाएगा तो पुनः स्मृतिर विस्मृत तत्व वर्तमना, आपके तत्व को जो जीव भूल बैठे ऐसे जीवों को पुनः आपके तत्व की स्फूर्ति करा देगा। और इसलिए हे प्रभु, हमें आपसे और कुछ कामना नहीं है, बस आप हमें आपकी कथाओं को सुनने के लिए 10,000 कान दे दीजिए। विदत्स्व करणायुतम, तो यही सब लीलाओं को आस्वादन करने के लिए सुनने के लिए भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ हर रोज इस प्रकार ही खेल करते थे और एक दिन कंस के द्वारा भेजा हुआ असुर जो बहुत लंबा था, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी इसीलिए उसको प्रलंबासुर कहते थे, आया और आकर एक गोप बालक का रूप लेकर उसी बच्चों के साथ मिल गया। तो भगवान पहचान लिया उसको और पहचानते ही अपने मन में इसको मारने का प्लान भी बना लिया और सभी सखाओं को बुलाकर दो दल में सब बट गए, एक के नायक कृष्ण बने और एक के बलराम जी, और खेल अलग अलग प्रकार से खेल करने लगे और उसमें शर्त यह थी कि हारने वाला दल जीतने वाले दल के बालकों को अपनी पीठ पर उठाकर यहाँ से भांडीरवट तक जाएगा और वहाँ से फिर यहाँ पर वापस आएगा। तो इस तरह खेल कर रहे थे और उसमें जब कृष्ण का दल हार गया तो उसके सब बच्चे बलराम जी के दल के सभी बच्चों को एक एक करके अपनी पीठ पर उठाकर भांडीरवट की ओर जाने लगे और चलते चलते जब भांडीरवट पहुँचे तो वहाँ से सब बालक वापस आने लगे, मुड़ गए पीछे की ओर। लेकिन जो प्रलंबासुर रूपी गोप था जिसने बलराम जी को अपनी पीठ पर उठाया था वो वहाँ से आगे जाने लगा भांडीरवट से, और आगे जाते जाते धीरे धीरे आकाश में उड़ने लगा मथुरा की ओर। लेकिन उठते उठते वह बलराम जी का भार सहन नहीं कर पा रहा था, अत्यंत भारी होने के कारण धरणी धरेंद्र पर्वत के समान बलराम जी का वजन उसको लग रहा था। तो मन में सोच रहा है कि इस छोटे से गोप बालक के रूप में मैं इसको ढोने में समर्थ नहीं हूँ, तो वह अपने मूल रूप में आ गया, पहाड़ जैसा काला काला शरीर और उसके ऊपर आभूषण सोने के आभूषण चमक रहे थे, कैसी शोभा हो रही थी। सुखदेव जी कहते कि जैसे वर्षाकालीन मेघ काले काले बादल हो और उस बादल में बिजली हो रही हो, ऐसे वह लग रहा था, काला काला उसका शरीर था और उसके ऊपर सोने के आभूषण चमक रहे थे। और बलराम जी उसके ऊपर वो कैसे लग रहे थे, तो कहते कि जैसे काला बादल हो वर्षाकालीन, उसके अंदर मेघ उसके अंदर बिजली चमकती हो और उस बादल के ऊपर चंद्रमा विराजमान हो, ऐसे वह काले काले प्रलंबासुर के ऊपर गोरे गोरे उज्जवल चंद्रमा के समान दाऊ जी विराजमान थे। तो अचानक इस दृश्य को देखकर बलराम जी ईषद अत्रसत थोड़ा सा भयभीत हो गए। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति चल रहा और अचानक आकाश में उड़ने लगे तो भय तो लगेगा ना। तो ईषद अत्रसत थोड़े से भयभीत हो गए, लेकिन थोड़ी देर में अथ आगत स्मृति, उसको स्मरण आ गया। तो क्या बलराम जी भयभीत हो गए? तो भगवान होकर भी भयभीत हो गए और उसको क्या अपने स्वरूप का स्मरण नहीं था, प्रश्न होता है। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने भाई की लीला देखने के लिए और विशेष करके उसके मन में इच्छा थी कि मेरे भाई बलराम को आकाश में उड़ते हुए देखूं, और इसलिए उसने बलराम जी के ऐश्वर्य ज्ञान को तिरोहित कर दिया, अपनी योग माया से बलराम जी के ऐश्वर्य को आच्छादित कर दिया। नहीं तो अगर ऐसा नहीं किया होता तब तो ये सब लीला ही नहीं होती। सखाओं के साथ खेल करना, अपने ऊपर ढोकर ले जाना, ये सब होता ही नहीं, क्योंकि प्रलंबासुर आया और आते ही जैसे कृष्ण ने उसको पहचान लिया ऐसे बलराम जी भी पहचान लेते, क्योंकि वह भी भगवान है। और स्वयं उसने आगे अधासुर वाले प्रसंग में कहा है कि कृष्ण को छोड़कर संसार में किसी और की इतनी शक्ति नहीं है कि वह अपनी माया से मुझे मोहित कर सके। तो प्रलंबासुर की माया उसके सामने टिकती नहीं, वो पहचान जाते और पहचान कर वहाँ पर ही सभी सखाओं के बीच में खींच कर उसका राम नाम सत्य कर देते, तो फिर ये सब लीला होती ही नहीं। तो इसलिए इन सभी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने बलराम जी के ऐश्वर्य ज्ञान को तिरोहित कर दिया। कैसे किया? तो वो तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुद ही कहते कि सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। जीव मात्र के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठकर वहीं से ही सभी को स्मृति, ज्ञान और विस्मरण कराते हैं। हम सब लोग रात में सो जाते हैं तो कुछ याद नहीं रहता है, यहाँ तक कि हम कौन है, स्त्री है कि पुरुष है, जीवित है या क्या है, हम कुछ नहीं जान पाते। लेकिन जैसे ही सुबह में आँख खुलती है तो भगवान कृपा करके स्मरण शक्ति देकर सब याद कराते हैं। नहीं तो अगर एक दिन ऐसा आया कि भगवान ने याद नहीं, स्मरण शक्ति नहीं दी, तो मत्तः स्मृति ज्ञानम, भगवान सभी जीवों को ज्ञान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से समझने का कितना भी प्रयास करे, या तो दूसरा कोई व्यक्ति उसको समझाने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन जब तक भगवान अंतःकरण में, हृदय में बैठकर उसको समझाएंगे नहीं, तब तक कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को समझ नहीं पाएगा। इसलिए कविराज गोस्वामी ने लिखा है, अंतर्यामी ईश्वरेर यही रीति हय, बाहिरे न कहे वस्तु प्रकाश हृदय। जो अंतर्यामी है भगवान, उसका यही स्वभाव है कि किसी को कुछ समझाना हो तो बाहिरे न, बाहर से सामने आकर उसको नहीं कहते, अंतःकरण में ही उसको समझाते, उस वस्तु पर प्रकाश करते हैं। और किसको ज्ञान किसको देंगे भगवान, किसके हृदय में प्रकाश करेंगे, तो उसका भी कहते हैं कि प्रभु के ये भजे तारे तार कृपा हय, सेई से ये सब लीला सत्य करिल। प्रभु के ये भजे तारे तार कृपा है, जो उसका भजन करेंगे उसके ऊपर कृपा करेंगे और उसको समझाएंगे, समझने की शक्ति देंगे, ज्ञान देंगे। वैसे तो सभी को देते हैं, लेकिन भजन करने वाले को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और सबको तो भौतिक ज्ञान देते हैं, लेकिन जो उसका भजन करते हैं इसको उसको ऐसी सुंदर बुद्धि देते हैं कि जिस बुद्धि के कारण वह उसको प्राप्त कर ले। येषां सतत युक्ता भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मापु यान्ति ते। ऐसी सुंदर बुद्धि देता हूँ भगवान कहते हैं कि जिससे वो मुझे प्राप्त कर ले। तो ज्ञान देने वाले भी कृष्ण है और अपोहनम का अर्थ है विस्मरण। जीवन में व्यक्ति के जीवन में ऐसे ऐसी घटना बनती है कि जिसका दुख वह सहन नहीं कर पाता है। दुखालयम संसार में है तो व्यक्ति के ऊपर ऐसी विपत्ति आती ही रहेगी, प्रिय वस्तु छूट जाएगी, संबंधियों का विच्छेद हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, और उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो दुख होता है वो असह्य होता है। और अगर वही दुख बना रहा तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भगवान कृपा करके उसके हृदय में बैठकर उसको अपोहन अर्थात उस दुख को धीरे धीरे विस्मृत करा देते, भुला देते हैं, ताकि वह धीरे धीरे वह सब दुखमय प्रसंग भूलकर फिर से अच्छी तरह से जीने लगे। यही भगवान की कृपा। इसलिए कहते हैं कि मृतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरे से ही सभी जीवों को स्मरण होता है, ज्ञान होता है और विस्मरण भी होता है। और हम एक बार जूह में महाराज जी के साथ, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के साथ रूम में बैठे थे, तो वहाँ के एक ब्रह्मचारी बहुत वरिष्ठ है, गीता के इसी दो यही श्लोक मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च और ईश्वरः सर्वभूतानां यतदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, इन दो श्लोकों के ऊपर उसके मन में संशय था। महाराज जी पूछ रहे थे कि भाई सब कुछ कराने वाले कृष्ण हैं, जीव को कर्म करने की शक्ति भी वह देते हैं, प्रेरणा भी वह देते हैं, तो सब कुछ वही कराते हैं, पाप भी उसी की प्रेरणा से जीव करता है, पुण्य भी उसी की प्रेरणा से करता है। और अपना दृष्टांत देते हैं कि मैं भी पहले मांसाहार करता था, शराब भी पीता था, तो कृष्ण ने मेरे साथ मुझसे पहले वो सब कार्य कराए और फिर मुझे अपनी सेवा में ले लिया, तो सब कुछ करने वाले कृष्ण ही है। महाराज जी ने बहुत प्रकार से समझाया लेकिन उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। महाराज जी कहते कि आपका कहना है कि सब कुछ कराने वाले कृष्ण है, तब तो कर्म का सिद्धांत ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण ही कराने वाले हैं पाप और पुण्य, तब तो जीवों का उसको जीवों को कर्म फल क्यों लगेगा, कृष्ण को ही लगना चाहिए ना, वो ही कराते हैं, तो फिर उसका फल जीव क्यों भोगे। तो अनेक बात कहकर महाराज जी ने समझाया लेकिन नहीं समझ पा रहे थे। इस बात को भगवद गीता में भगवान ने जहाँ पे द्वितीय अध्याय में कहा है कि नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। भगवान न तो किसी के पाप को ग्रहण करते और न ही किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। अज्ञान के कारण जीव का जब ज्ञान आवृत्त हो जाता है तब वह इस संसार में मोहग्रस्त हो जाता है। तो उसकी टीका में चक्रवर्ती पाद ने इस बात को बहुत सुंदर समझाया है कि जीव पाप क्यों करता है, पुण्य क्यों करता है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति पाप करता है पूर्व के पाप के कारण उसका अंतःकरण मलिन हो जाता है और उसका मलिन अंतःकरण उसे फिर से पाप में ही प्रवृत्त करेगा। और अगर कोई पुण्यशाली जीव है तो उसका अंतःकरण पवित्र होगा और पवित्र और शुद्ध अंतःकरण उस जीव को फिर से पुण्य में ही प्रयोजित करेगा, पुण्य में ही लगाएगा। तो भगवान सिर्फ जीवों को कर्म करने की शक्ति देते हैं और पाप पुण्य तो व्यक्ति अपने ही पापों से प्रेरित होकर पाप करता है और अपने ही पुण्य कर्म से प्रेरित होकर पुण्य कर्म में लगता है। कृष्ण तो मात्र जीवों को कर्म करने की शक्ति देते हैं, जैसे सरकार हमें बिजली देती है, फिर उस बिजली से हमें क्या करना वह हमारे ऊपर आधार है। उससे हमको एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है, हीटर चलाना, गीजर, पंखा, क्या वो हमारे ऊपर है। ऐसे ही भगवान जीव मात्र को शक्ति देते हैं, लेकिन उसे क्या करना है, पाप पुण्य करना वह उसके लिए जीव स्वतंत्र है। वह अपनी वासना के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार पाप और पुण्य करेगा। लेकिन जब कोई भी जीव पाप कर्म में प्रवृत्त होता है तो उसको उसके पाप की सजा देने के लिए भगवान की माया शक्ति उसके ज्ञान को ढक देती है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, उसका ज्ञान माया से ढक जाता है। जब ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है तब उस जीव की देहात्म बुद्धि हो जाती है, अर्थात देह को ही आत्मा मानने लगता है और फिर इसी के अनुसार पापों में लगा रहता है। तो भगवान किसी को पाप पुण्य नहीं कराते हैं, लेकिन उस ब्रह्मचारी जी को महाराज जी ने बहुत प्रकार से समझाया लेकिन नहीं उसको कुछ समझ में आ रहा था। हाँ कह रहे थे लेकिन इतना समझ नहीं, उसको बस यही मन में घुस गया था कि सब कुछ कराने वाले कृष्ण ही है। तो उसके जाने के बाद महाराज जी कहते हैं कि जिसने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की सेवा में लगा दिया है, हम पूरा जीवन उसकी सेवा में निकाल दिया है, उसके मन में भी ऐसी बात आ रही है। संसार में तो प्रायः यही बात प्रचलित है कि भाई सब कुछ करने वाले भगवान है, उसकी इच्छा के बिना एक पान भी नहीं हिलता है, तो हम जो कर रहे हैं उसी वही करा रहे हैं, पाप भी वही करा रहे हैं, पुण्य भी वही करा रहे हैं, सब कुछ उसके हाथ में है। संसार में तो लोगों की यही धारणा है, लेकिन भगवान की सेवा में लगे हुए व्यक्ति को भी ऐसा संशय हो जाता है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो यहाँ पर बलराम जी के ऐश्वर्य ज्ञान को कृष्ण ने तिरोहित कर दिया उसकी लीला देखने के लिए, और इसलिए जब प्रलम्बासुर उसको लेकर भागा और प्रलम्बासुर अपने मूल रूप में आ गया तो उसके भयंकर स्वरूप को देखकर बलराम जी ईषद अत्रसत थोड़े से भयभीत हो गए। लेकिन अथ आगत स्मृति, अथागत स्मृति, लेकिन थोड़ी देर बाद बलराम जी को स्मरण आ गया। कैसे आया तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि लब्ध्वा अभीष्टम कृष्ण, कृष्ण का जो अभीष्ट था वह पूर्ण हो गया। क्या अभीष्ट था? अपने भाई की लीला देखना चाहते थे और विशेष करके अपने भाई को आकाश में उड़ते हुए देखना चाहते थे, तो वह उसका अभीष्ट पूर्ण हो गया। और साथ में देखा कि साग्रज बिभ्यति, मेरे बड़े भाई भयभीत है, उसके मुख पर से पहचान गए कि इसके मन में डर है। तत्र पुनः ऐश्वर्य ज्ञानम सहसेव अर्पयामास, तो कृष्ण ने अपना जो उसका ऐश्वर्य ढका था अपनी माया से, उस माया को तिरोहित कर दिया। और उसकी उसके बल को याद कराया। सनातन गोस्वामी विष्णु पुराण के एक श्लोक से कहते कि कृष्ण बलराम जी के सामने इशारे से कहते कि किम अयम मानुषो भाव व्यक्तम, अरे आप क्यों ऐसे मनुष्य भाव में है, मर्त्य शरीर जैसा भाव आपका, मनुष्य जैसा भाव क्यों है? आप अपने स्वरूप को याद कीजिए, सर्वात्मन सर्व गुह्यानाम, आप सर्वात्मा है, आप सब कुछ जानने वाले है, तो फिर ऐसे मनुष्य भाव में क्यों है? और हरिवंश पुराण का भी एक श्लोक लिखा है, उसमें तो भगवान कहते हैं कि बलदेवेन कृष्ण प्रार्थित, बलराम जी के सामने श्री कृष्ण प्रार्थना कर रहे कि सचत्वम नत्वम प्राकृत बालक, अरे आप अपने स्वरूप को याद कीजिए, आप कोई प्राकृत बालक नहीं है, किंतु साक्षात अनंतोसी, आप तो साक्षात अनंत है, काल के भी काल है। बोधितवान इत्यादि का श्री कृष्ण से वचनात्, इस प्रकार कृष्ण के वचनों को सुनकर सद्य एवागता स्मृति, बलराम जी को अपना स्मरण सद्य तुरंत ही एव आगत स्मृति, अपने स्वरूप का स्मरण हो गया और जान लिया कि दैत्य वधार्थम निज अवतार प्रयोजन, मेरे अवतार का प्रयोजन ही है, मैं इसीलिए यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ कि ऐसे दैत्यों को मारना है। तो बलराम जी को इस बात का स्मरण हो गया। और एक भाव तो यह है और दूसरा भाव सनातन गोस्वामी लिख रहे यदवा अथवा पश्चात आगत स्मृति, बलराम जी को पीछे से स्मरण आया। पहले जब प्रलंबासुर कृष्ण को लेकर उड़ा और जब मूल रूप में आ गया तो बलराम जी तो समझ गए कि ये कोई हमारा सखा नहीं, ये असुर है। लेकिन सोचने लगे भले ही असुर है लेकिन ये आया है बालक रूप में, और बालक तो सर्वथा अवध्य है, किसी भी स्थिति में बच्चे को मारना उचित नहीं है, और उस पर भी यह गोप बालक का रूप लेकर आया है और कृष्ण ने इसकी मित्रता को स्वीकार किया है, तब तो इसको मारना ही नहीं चाहिए। और फिर ये असुर है तो मारना चाहिए। तो इस बात में ईशत त्रसित भयभीत हो गए कि क्या करूं, है असुर और बालक का रूप लेकर आया है, हमारा मित्र है, सखा बनकर आया है। तो फिर सोचने लगे कि श्री कृष्ण से पुतना वत्सासुर वधानुसंधानम, कृष्ण की पुतना वध की लीला और वत्सासुर वध की लीला के ऊपर स्मरण करने लगे कि पुतना एक स्त्री रूप में आई थी, गोपी का वेश बनाकर आई थी, लेकिन कृष्ण ने जब जान लिया कि ये राक्षसी है तो उसको मार दिया, और वत्सासुर एक गाय के बछड़े के रूप में आया था। और जब विदित्वा कृष्ण से, कृष्ण ने इस बात को जान लिया कि ये तो कोई बछड़ा नहीं है, असुर है, तो उसको भी मार दिया। तो कृष्ण ने एक स्त्री की हत्या की, एक स्त्री यद्यपि अवध्य है उसको मारना उचित नहीं, लेकिन फिर भी राक्षसी होने के कारण कृष्ण ने उसको मार दिया, और बछड़ा भी मारने योग्य नहीं है फिर भी असुर होने के कारण कृष्ण ने उसको मार दिया। तो तथा यम गोप वेशोपि मया हंतुम योग्य, तो यह भले कृष्ण ने जैसा किया वैसा ही मैं करूँ, तो भले ये गोप वेश में है लेकिन इसको मारना मेरे लिए योग्य है। एवेति विचारेण, इस प्रकार विचार करते हुए कहते कि अथ आगत स्मृति, तब यह स्मरण आया कि नहीं नहीं कृष्ण ने भी ऐसे स्त्री को और बछड़े को मारा था, तो मुझे भी बालक को मारने में कोई दोष नहीं है। अथवा तो दोनों ही पक्ष, सनातन गोस्वामी कहते कि दोनों ही पक्ष ले सकते कि पहले कृष्ण ने उसको अपना स्वरूप स्मरण कराया और फिर बलराम जी चिंता में स्वरूप का तो स्मरण हो गया लेकिन कैसे मारूं इस बात पर विचार करने लगे, तो पुतना वध और वत्सासुर की लीला का स्मरण करके उसको मारने के लिए प्रवृत्त हो गए। और तुरंत ही बलराम जी ने देखा कि विहाय सार्थम इव हरंत आत्मन, यह असुर विहाय सार्थात आकाश में मुझे लेकर भाग रहा है। कैसे, तो कहते कि अर्थम इव, जैसे कोई चोर लुटेरे किसी का धन, किसी की संपत्ति लूट कर भागते हैं, ऐसे ही यह मुझे लेकर भाग रहा है। और तब रुषा अत्यंत क्रोधित होकर शिरसी दृढ़ेन मुष्टिना अहनत, बलराम जी ने उसके सिर पर दृढ़ेना अर्थात अपने मजबूत हाथ से वेग पूर्वक प्रहार किया मुष्टिका से। कैसे, तो कहते कि सुराधिप गिरिम इव वज्र, जैसे सुराधिप देवताओं के राजा इंद्र ने पर्वतों के ऊपर अपने वज्र से रंहसा अर्थात वेग पूर्वक प्रहार किया था, इसी प्रकार पूर्ण ताकत से बलराम जी ने प्रलंबासुर की मस्तक के ऊपर अपनी मुष्टिका से प्रहार किया। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पर बलराम जी की मुष्टिका को वज्र की उपमा दी है, वो तो बराबर है, लेकिन पर्वतों को प्रलंबासुर की उपमा क्यों दी, पर्वतों को असुर की उपमा क्यों दी? तो कहते हैं कि सह दैत्यस्योपमा पूरा पक्ष असद भावात गिरिणा अंबरोत्पतनात, पूर्व में ये पर्वत भी असुरों जैसा ही कार्य करते थे, पक्ष जब उसको पांखे थी तब उड़ते उड़ते पर्वत, वैसे तो शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा है इसलिए यह बात सच लग रही है, नहीं तो ये बुद्धि में घुसने वाली बात नहीं है, इतने बड़े पर्वत उड़ते हो आकाश में। तो पर्वत जब उड़ते थे और उड़ते उड़ते कहीं पर भी बैठ जाते थे, किसी नगर पर या शहर पर या गांव पर बैठते थे पूरी बस्ती, अच्छा है हमें सौभाग्य नहीं मिला पर्वत को उड़ते हुए देखने का। तो पर्वतों के इस कार्य को देखकर देवराज इंद्र एक दिन क्रोधित हो गए और वज्र अपने हाथ में ले लिया सभी पर्वतों को चूर्ण करने के लिए। लेकिन उसके मन में आया कि पर्वतों को चूर्ण करना भी योग्य नहीं, क्योंकि पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्वतों की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना पर्वतों के पृथ्वी का बैलेंस नहीं रहेगा। आज विज्ञान भी यह प्रमाणित करे कि इस पृथ्वी के बैलेंस में सबसे बड़ा सहयोग है पर्वतों का, और इसलिए पर्वत को भूधर कहते हैं। भू अर्थात पृथ्वी और धर का अर्थात है धारण करते हैं। पृथ्वी को पर्वतों ने ही धारण किया हुआ है, और अगर पर्वत नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का बैलेंस भी नहीं रहेगा। और इसी अवसर का लाभ एक बार हिरण्याक्ष ने भी लिया था। जीव गोस्वामी ने तृतीय स्कंद में वराह अवतार वाली कथा में एक प्रसंग लिखा है कि एक बार पर्व के समय में सभी पर्वत स्नान करने के लिए उत्तर की दिशा में समुद्र की ओर चले गए, क्योंकि पर्व का अर्थात उत्सव का समय था तो सबको स्नान करना था। आज भी हमारे यहाँ पर परंपरा है कि कुछ ऐसा पर्व या तिथि के समय में लोग पवित्र कुंड में नदी समुद्र में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही कोई पर्व पर सभी पर्वत स्नान करने के लिए उत्तर की ओर समुद्र की ओर गए, क्योंकि उसको स्नान करना हो तो कुछ पर्वत अभी कुंड में या सरोवर में नदी में तो स्नान कर नहीं पाएंगे, उसको समुद्र में ही जाना पड़ेगा। तो जब सब पर्वत उत्तर समुद्र की ओर चले गए तो पृथ्वी का वजन एकदम कम हो गया, सब भार था वो तो चला गया। और इसी अवसर का लाभ लेकर हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया। पृथ्वी को हल्की देखकर संपूर्ण पृथ्वी को उठाकर हिरण्याक्ष रसातल में चला गया, और उसके ऊपर जितनी भी जीव सृष्टि थी वह सब नष्ट हो गए। जो केवल सिद्ध पुरुष थे वह अपने योग बल से ऊपर के लोक में, कश्यप जी इत्यादि बड़े बड़े ऋषि थे, मनु महाराज इत्यादि ऊपर के लोक में चले गए, बाकी की संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो गई। और फिर मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पिताजी मेरे पुत्रों को रहने के लिए जीवों के आश्रय भूता पृथ्वी रसातल में है, आप उसका उद्धार कीजिए। और ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने फिर से वराह रूप लिया। एक कल्प में भगवान ने दो बार वराह रूप लिया, इसलिए भागवत में तृतीय स्कंद में वराह अवतार की कथा दो बार है। एक तो प्रारंभ में प्रलय समाप्त होने पर पृथ्वी जो प्रलय के जल में डूबी हुई थी उसको उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया, और फिर से जब हिरण्याक्ष लेकर चला गया तो उसके लिए भगवान ने वराह रूप लिया। तो कहने का तात्पर्य कि पृथ्वी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए पर्वत का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए इंद्र ने सोचा कि इसको मारना योग्य नहीं है लेकिन इसके पंख काट दे, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने वज्र को छोड़ा और वज्र से सभी पर्वत के पंख काट दिए, और पंख काटते ही पर्वत धड़ाम से गिरे, जैसे अगले श्लोक में बताते हैं कि बलराम जी की मुष्टिका के प्रहार से वो सब प्रलंबासुर भूमि पर जैसे गिरा, जैसे पर्वत गिरे थे वैसे ही प्रलंबासुर गिरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। खूब खूब धन्यवाद सभी भक्तों का, और जो त्रुटि है उसके लिए सभी वैष्णव के चरणों में क्षमा प्रार्थना करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। श्रील प्रभुपाद की।
वक्ता हरसुंदर प्रभु।